जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो रामचंद्र जी की कथा कहने से पहले आज के इस पावन दिवस पर भगवान राम को प्रणाम करेंगे। आप सब हमारे पीछे दोहराइए, रामम रामानुजम सीता भरतम भरतानुजम सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। हम प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम श्रीमती सीता देवी भगवान के भाई भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न और उनके मित्र श्री सुग्रीव जी को तथा उनके परम भक्त वायु पुत्र हनुमान जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा। तो रामनवमी है आज और इस राम कथा का अंतिम दिवस। पिछले करीब 10 दिनों से कितना कौन सा दिन आज है आज 11वां दिन है। तो पिछले 10 दिनों से हम लोग ये रामायण की कथा कर रहे हैं रामनवमी के अवसर पर, और आज रामनवमी है तो इसीलिए आखिरी दिन इस राम कथा का है। कल सुबह से जैसे श्रीमद् भागवत चल रहा था 10वां स्कंद, वो चलता रहेगा, लेकिन ये संध्या की क्लास रामायण कल से नहीं होगी, तो ये आखिरी क्लास है यहाँ। आज सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे रामायण पे, किस तरह मंथरा ने कई कई के मन को प्रभावित किया, किस तरह कई कई गई दशरथ महाराज के पास, और कैसे दशरथ महाराज और कई कई का संवाद हुआ। उसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरह व्यक्ति को आत्मसंयमी होना आवश्यक है, साथ ही साथ आत्मसंयमी तो हो लेकिन विचारवान भी हो, जिज्ञासा करे, उसको संतुष्टि हो, और ये सब उसे सत्संग में प्राप्त हो सकता है। इसकी चर्चा हम लोगों ने ये सुबह विस्तार से की थी, और सुबह चर्चा यहाँ तक की थी कि किस प्रकार बहुत समझाने का प्रयास किया दशरथ महाराज ने, लेकिन कैकेयी मानी नहीं। तो कैकेयी के सुंदरता का वर्णन कर रहे थे कि कैकेयी बहुत सुंदर थी लेकिन उनके अंदर गुणों की सुंदरता नहीं थी। उन्होंने भक्ति में या जीवन में, इस जीवन में हमें जो उपहार मिले हैं उनके मूल्यों को समझा नहीं था। तो हालांकि वो बाहरी दृष्टि से सुंदर थी लेकिन भगवान की दृष्टि से वो सुंदर नहीं थी, उनके कार्य सुंदर नहीं थे। तो ये चर्चा हम लोग सुबह कर रहे थे। दोपहर को चर्चा की थी भगवान राम के जन्म की, और कैसे भगवान राम का जैसे प्राकट्य हुआ इस ब्रह्मांड में, हम अपने हृदय में भगवान को कैसे स्थापित कर सकते हैं, ये दोपहर को हम लोगों ने चर्चा की थी बड़े विस्तार से, कि क्या क्या कार्य व्यक्ति कर सकते हैं व्यवहारिक तौर पर हम भक्त के रूप में, कि जिससे हमारा जो हृदय है भागवत के अनुसार, जिसको हमने लोहे की दीवारों के अंदर रख दिया है, तो उन लोहे की दीवारों को कैसे तोड़ा जा सकता है, ये दोपहर को हम लोगों ने चर्चा की थी। तो अब सुबह की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कथा को। तो हम चर्चा कर रहे थे कि कैकेयी के आधार पर कि जीवन, ये जो मनुष्य जीवन है, ये हमें क्या क्या उपहार देता है, कौन से सुंदर सुंदर उपहार दिए हैं। पहला उपहार था बल, दूसरा उपहार था सौंदर्य, और तीसरा उपहार जिसकी हम लोगों ने चर्चा की वो ये था कि भगवान की कृपा पर विश्वास होना, श्रद्धा होना कि एक दिन विश्व कृपा आएगी। ये तीन उपहारों की चर्चा कर चुके थे। कोई चौथे की भी की थी कि तीन की ही की थी? तीन की ही की थी। ये जो जीवन है ये हमें केवल तीन चार उपहार ही नहीं देता, बहुत से उपहार देता है। तो और एक बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा शक्तिशाली उपहार इस जीवन ने हमें दिया है जिसका उपयोग हम बहुत कम करते हैं, और वो है करुणा। अन्य जीवों के प्रति करुणा का भाव, ये एक बहुत बड़ा उपहार है इस मानव जीवन का। हम लोग इस करुणा का उपयोग नहीं करते। करुणा क्या है, सही दृष्टि में करुणा क्या है? एक होता है करुणा किसी लाचार व्यक्ति को देखकर उस पर कुछ थोड़ा सा थोड़ा उसके लिए हृदय में अच्छी भावनाएं ले आना, इसको करुणा कह सकते हैं। या फिर समाज की स्थिति को देखकर कुछ समाज के लिए करना, इसको करुणा कह सकते हैं। लेकिन परम करुणा, जो सर्वोच्च करुणा है, नटराज दयालुता, सर्वोच्च करुणा क्या है? करुणा का अर्थ होता है उस व्यक्ति के स्थान पर रहकर उसको जो कष्ट हैं उन कष्टों से दूर जाकर उसके लिए जो सबसे अच्छा है वो करना, उसे करुणा कहते हैं। तो जब हम किसी के लिए कुछ खाना देते हैं, कुछ अन्य चीजें देते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन सच्ची करुणा क्या है? जब हम उस व्यक्ति की स्थिति में जाएं और देखें कि उसको क्या कष्ट है, क्या केवल भूख, क्या केवल प्यास, क्या केवल कपड़ा, यही उसके कष्ट हैं, या मूल कष्ट है कि वो आनंद के स्रोत, वो अपने जड़ों से कट गया है। जड़ से कटकर पेड़ ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकता, तो इसीलिए जड़ से कट गया है उसको जड़ से पुनः जोड़ना, ये करुणा है। जहां वो जड़ से अलग हो रहा है उसको जड़ से जोड़ देना ताकि हमेशा पेड़ हरा भरा रहे, इसे सच्ची करुणा कहते हैं। और वो होता है जब हम जीव को उसके मूल, उसकी जड़ भगवान श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। श्री कृष्ण जड़ हैं, जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में समझाते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण हैं। तो फिर इस प्रकार से उन सर्व कारण कारण के पास ले जाना, भगवान के पास ले जाना, ये सच्ची करुणा है। तो ऐसी करुणा को हमें दर्शाना चाहिए, ये करुणा होनी चाहिए। तो कैसे ये करुणा करें हम जीवों के प्रति? करुणा मतलब सबसे पहले उनको देखकर, हमारे हृदय में उनकी स्थिति देखकर दुख होना चाहिए, और फिर हम उनकी स्थिति में क्या उनको सबसे ज्यादा अधिक मदद कर सकते हैं जिससे वो भगवान के निकट आए, ये करुणा है, ये हमें सीखना चाहिए। जब कोई व्यक्ति हमारे प्रति अपराध करता है उसको ये सोचकर क्षमा कर देना कि इस व्यक्ति ने ये जो अपराध किया है अज्ञान में किया है, इस व्यक्ति ने अपराध किया है क्योंकि ये ज्ञान में नहीं है, जानता नहीं है, इसको क्षमा करके भगवान का भक्त बनने की प्रार्थना मैं करूं, ये करुणा है। करुणा केवल क्षमा करना नहीं है, करुणा क्षमा करके उस व्यक्ति के लिए बड़ी तीव्रता से प्रार्थना करना है। एक करुणा भरा हृदय ही अपने शत्रु के लिए भी बड़ी तीव्रता से प्रार्थना कर सकता है। भगवान से प्रामाणिकता से प्रार्थना कर सकता है। तो इसीलिए करुणा हृदय में आवश्यक है, ये करुणा होनी चाहिए हमारे हृदय में। इसीलिए उपहार है हमारे लिए, और केवल ये उपहार नहीं है, बहुत बड़ी शक्ति है करुणा। क्षमा कर देना ये एक बहुत बड़ी शक्ति है जो बहुत कम लोगों में होती है। करुणा दिखाना ये बड़ा बहुत बड़ी शक्ति है जो बहुत कम लोगों में होती है। भगवान के ज्ञान का प्रचार करना, भगवान की लीलाओं का, भगवान की भक्ति का प्रचार करना, ये करुणा का मूर्तिमान स्वरूप है, बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत कम लोगों में होती है। इसीलिए करुणा बहुत महत्वपूर्ण, बहुत शक्तिशाली उपहार है हमारे जीवन का। आप में से एक दो लोग पीछे मदद कर सकते हैं, शायद कोई है नहीं वहां पर कटिंग के लिए। ओके, ठीक है। तो ये करुणा हमारे लिए एक उपहार है, बड़ा महत्वपूर्ण। तो जीवन के कौन कौन से उपहार अब तक हो गए? एक हो गया बल, दूसरा हुआ सुंदरता, तीसरा हुआ विश्वास भगवान की कृपा में, और चौथा है जो अभी हमने चर्चा की, करुणा। पांचवा उपहार भगवान ने हमें दिया, ये जीवन ने हमें दिया, और वो है बुद्धि। भगवान ने इस प्रकृति के द्वारा हमें विवेक बुद्धि दी है, ये बहुत बड़ा उपहार है। क्यों? इसके द्वारा हम भेद कर सकते हैं अच्छे और बुरे में। विवेक का अर्थ होता है अच्छे और बुरे में भेद करना। तो ये हमें शक्ति प्रदान की है इस जीवन ने। पशुओं में ये शक्ति नहीं होती, वे लोग अच्छे बुरे का भेद नहीं कर पाते। उनके लिए बस खाना पीना इत्यादि, बस वही जीवन है। लेकिन मनुष्यों में ये उपहार है कि हम भेद कर सकते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करने लायक है क्या नहीं करने लायक है। और जो लोग ये भेद नहीं करते हैं, भगवान भगवद गीता में उन्हें असुर कहते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये असुरों का भाव है। लेकिन जो मनुष्य हैं वो विवेक से कार्य लेते हैं, बुद्धि से कार्य लेते हैं। बहुत सुंदर उपहार है ये। लोग बुद्धि का उपयोग करते हैं कुछ इस जगत में बहुत बड़ी चीजों को बनाने के लिए। लोग बुद्धि का उपयोग करते हैं एटम बम बनाने के लिए जिससे नाश होता है, या लोग बुद्धि का उपयोग करते कोई ऐसी चीज बनाने के लिए जिससे दुनिया में, सारी दुनिया में तहलका मच जाता है। लेकिन बुद्धि का उपयोग नाश करने के लिए नहीं होना चाहिए। बुद्धि का उपयोग जीवन को सफलता की ओर ले जाने के लिए होना चाहिए। यह सच्ची बुद्धि है। तो बुद्धि हमारे लिए एक बहुत सुंदर उपहार है इस जीवन का। और दो महत्वपूर्ण और वैसे तो बहुत से उपहार हैं, दो महत्वपूर्ण और उपहारों की चर्चा करना चाहते हैं, जिनमें से एक है श्रद्धा। श्रद्धा पहले हमने चर्चा की थी भगवान की कृपा में विश्वास, कि एक दिन कृपा आएगी। और एक श्रद्धा होती है, अर्थात ये श्रद्धा कि जानना कि हम जिस पथ पर हैं वो पथ एकदम सही है, हमने जिस गति को चुना है वो गति एकदम सही है, हमने जिन व्यक्तियों को चुना है जिन्होंने हमें ये पथ दिया है, जिन्होंने हमें गति दी है, वो व्यक्ति सही है। अर्थात परंपरा में विश्वास होना, श्रद्धा होना, भक्ति के मार्ग में श्रद्धा होना, और हमारी परम गति भगवान में श्रद्धा होना, ये एक बहुत बड़ा उपहार हमारे लिए है। क्योंकि ये उपहार हर एक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस श्रद्धा को रखना, श्रद्धा शब्द विश्वास कहले, ये क्या है? सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा शब्द क्या है? सुदृढ़ निश्चय। क्या सुदृढ़ निश्चय होना चाहिए? ये कि हम होंगे कामयाब एक दिन, ये श्रद्धा नहीं है। हम लोग एक दिन मृत्यु के परे चले जाएंगे, वैज्ञानिक कहते ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा क्या है? कृष्ण कर्म, भगवान के लिए अगर हम कर्म करते हैं, कृष्ण भक्ति कैले, अगर हम कृष्ण की भक्ति करते हैं हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, इसे श्रद्धा कहते हैं। तो श्रद्धा होना चाहिए। और अंत में जिस एक उपहार की चर्चा हम करना चाहते हैं अन्य बहुत से उपहारों में, वो है प्रेम। देखिए मनुष्य जीवन मिलते ही हमें ये सारे उपहार मिल जाते हैं। हम लोग बहुत अमीर लोग हैं, हम तो मानते हैं अपने आप को गरीब, क्योंकि इन उपहारों का मूल्य नहीं पता हमें। इस जगत में अमीर किसको माना जाता है? जिसके पास थोड़ा सा धन है। वो धन से क्या इकट्ठा करता है? वो धन से वो सारे संसाधन इकट्ठा करता है जो उसे इस जगत में बांधे रखता है। लेकिन ये जो उपहार हैं जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, ये ऐसे उपहार हैं, ये ऐसे संसाधन हैं जिनके द्वारा इस जगत के परे जाया जा सकता है। तो सही दृष्टि में गरीब वो व्यक्ति है जिसने इन उपहारों का उपयोग नहीं किया। केवल धन कमाने वाला वो अमीर नहीं है, बहुत गरीब है, क्योंकि उसके पास केवल धन है। इस जगत में अगर केवल धन है तो वो बहुत गरीब आदमी है। लेकिन जिसके पास प्रेम है, जिसके पास श्रद्धा है, जिसके पास विश्वास है, सुंदरता है, बल है, करुणा है, वो अमीर आदमी है। और इसीलिए प्रेम ये बहुत महत्वपूर्ण उपहार है। किससे प्रेम करें, कैसे प्रेम करें? हमें प्रेम करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण से, अंततः भगवान के भक्तों से प्रेम करना चाहिए। भगवान कपिल कहते हैं कि अगर हमारी आसक्ति भक्तों में है, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। प्रसंगान अजरम पाशमात्मनः कवयो विदु स एव साधु शुक्रतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। कि सब जानते हैं कि इस जगत में अगर आसक्ति होगी तो बंधन का कारण है, लेकिन वही आसक्ति साधुओं में हो जाए, भक्तों में हो जाए, भगवान के मोक्ष द्वारम अपावृतम, हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, एक भक्त से आसक्त हो जाइए बस, एक ऐसे भक्त से जो शुद्ध है, जिसके हृदय में कृष्ण है, जीवन सफल हो जाएगा। और इसका प्रमाण है शिल प्रभुपाद। ऐसे ऐसे लोग शिल प्रभुपाद से आसक्त हुए जिन्हें कृष्ण के विषय में कुछ नहीं पता था। वे नहीं जानते थे कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है। शिल प्रभुपाद से पूछा जाता था चित्र देखकर, ये जो खड़ी है कृष्ण के पास में, उनकी गर्लफ्रेंड है क्या? वे नहीं जानते थे कृष्ण, वे नहीं जानते थे राधा रानी को, वे जानते थे शिल प्रभुपाद को। और देखिए भक्ति की कितनी ऊंची सीमा तक वो पहुंचे। और ये इस कारण से है क्योंकि उनकी आसक्ति थी शिल प्रभुपाद में, प्रेम था गाढ़ा प्रभुपाद में, जीवन थे प्रभुपाद उनके लिए, और इसीलिए उन्हें सफलता मिली। तो अगर हम भक्तों से ये प्रेम करें तो भगवान अपने आप हमें सफलता प्रदान करते हैं, मोक्ष द्वारम अपावृतम। इसीलिए प्रभुपाद की बहुत इच्छा थी कि भक्तों का आपस में प्रेम हो। ये जो हमारा आंदोलन है, ये प्रेम का आंदोलन है। एक दूसरे से प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना सिखलाता है ये आंदोलन। ये आंदोलन किसी को दबाने का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन अन्यों के सर पर पांव रखकर चलने का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन आतंक फैलाने का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन प्रेम फैलाने का आंदोलन है जो प्रभुपाद ने फैलाया। प्रभुपाद के हृदय में इतना प्रेम था। एक समय प्रभुपाद ने कहा अपनी एक शिष्या के लिए कि ये मेरे लिए अपना सर कटवा सकती है और मैं इसके लिए अपना सर कटवा सकता हूं। इसे कहते हैं प्रेम। और सही में प्रभुपाद जी के शिष्यों ने जो प्रेम प्रभुपाद से दिखलाया वो इसी स्तर का था कि वो उनके लिए अपना सर कटवाने तक तैयार थे। आज हमारे अंदर वो भावना नहीं है, हम अनुयायी हैं प्रभुपाद के, गुरु के, लेकिन सर कटाने के लिए तैयार नहीं। श्रील प्रभुपाद ने गर्ग मुनि और ब्रह्मानंद प्रभु को कह दिया, जाओ पाकिस्तान में प्रचार करो। पाकिस्तान उस समय 70s चले गए प्रचार करने के लिए, सन्यासी के वेश में हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं अमेरिका के लोग, और भारत और पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया। अब दोनों उस वहां पर हैं। देखिए, इसे कहते हैं कि प्रभुपाद के लिए अपना सर कटाने तैयार है। तो वहां पर हैं, दोनों फंस गए हैं और जानते थे कि भारत पाकिस्तान युद्ध है, और अगर वहां पर ऐसे देख लिया सैफरन में तो काट डालेंगे। एयरपोर्ट पर आते हैं, एयरपोर्ट पर लोग वहां कहते हैं आखिरी प्लेन जाने वाला है, उसके बाद एयरपोर्ट बंद हो रहा है क्योंकि युद्ध शुरू हो गया है। तो फिर उन्होंने कहा हमें इसमें जाने दीजिए, बोले जगह नहीं है, फुल हो गया है, सॉरी। अब एक ही उनके पास चारा था, अगर इससे बाहर नहीं निकले तो सर कटने वाला है। बहुत प्रयास किया, नहीं हुआ। अंत में वे गए और उन्होंने दिखाया, देखो हम अमेरिका से हैं। उस समय पाकिस्तान को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, भारत को रशिया। देखो हम अमेरिका से, उनका अमेरिकन पासपोर्ट था। अगर आपने हमको इस प्लेन पे नहीं जाने दिए तो हम एम्बेसी में कंप्लेन कर देंगे, आपने हमारे साथ गलत किया। तो हमारे पाकिस्तान वालों ने सोचा, रे अमेरिका वालों को तो संभाल कर रखना है, ये गड़बड़ नहीं हो। तो इसलिए उन दोनों को किसी तरह प्लेन में बिठा दिया गया और वो वहां से निकले। प्राणों की भी चिंता नहीं करते। चाइना में जाकर कहा प्रचार करो प्रभुपाद ने। चाइना में जा रहे हैं जहां पर अगर आपके बैग में भगवत गीता दिख जाती थी आपको अरेस्ट कर लेते थे। बैग में भगवत गीता दिख गई एयरपोर्ट पे आप अरेस्ट हो जाओगे। वहां पर उन्होंने भगवत गीता स्मगल की। रशिया में इतना अत्याचार हुआ भक्तों के ऊपर, जेल में डाला गया, हर रोज उनको टॉर्चर किया जाता था, खाने को नहीं दे रहे हैं, मार रहे हैं उनको, केवल इसलिए कि ये बंद करो ये कहना। लेकिन उनका समर्पण प्रभुपाद के प्रति, प्रेम इतना था कि उन्होंने मार खाई, अपनी जान दी, लेकिन इस महामंत्र को करना नहीं छोड़ा। रशिया के भक्तों का एक बहुत सुंदर ग्रंथ आया था, सॉल्टेड ब्रेड। उनको, उनके पास जपमाला नहीं थी, तो खाने को ब्रेड मिलती थी, उसको सुखा सुखा कर उसका उन्होंने माला बनाई थी और उस पर जप करते थे। हम लोगों को पढ़ना चाहिए ये सब। आज हमारे पास सारी सुविधा है, कोई चिंता की बात नहीं है। जाते हैं, गाड़ियां मिल जाती हैं जाने के लिए, प्लेन में जाते हैं, कहीं भी जाएं तो कोई विरोध नहीं, और अगर विरोध हो तो हम जाते ही नहीं है वहां पर प्रचार के लिए। लेकिन ये हमारे आंदोलन की शुरुआत है, क्योंकि प्रेम किया उन्होंने और अपने प्राण देने तैयार थे। इसीलिए आज भी अगर हमें एक भगवान के भक्त से प्रेम हो जाए तो निश्चित है कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो ये बहुत बड़ा उपहार प्रेम का हम सबको मिला है। तो ऐसे इन उपहारों का उपयोग करके हम सही दृष्टि में सुंदर बनते हैं। लेकिन इस समय कैकई इनमें से किसी उपहार का उपयोग नहीं कर रही है, वो तो द्वेष से भर गई है, घृणा से भर गई है, और केवल अब राम को वनवास देना चाहती है। तो दशरथ महाराज ने जब बड़ी प्रार्थना की, उसने नहीं सुना। दशरथ महाराज ने कहा, तुम्हारी राम से क्या दुश्मनी है? आपको स्मरण होगा, हमने बताया था आज सुबह कि दशरथ महाराज ने कहा ठीक है भरत को राज्य दे देते हैं, लेकिन वो नहीं मानी, राम को जाना ही होगा। तो उन्होंने पूछा, राम से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? राम ये तो सारे धर्म का पालन करता है और बहुत नम्रता से तुम्हें, तुम्हारी सेवा करता है, गुरु की सेवा करता है। थोड़ा गुणगान करने लगे दशरथ महाराज की, शायद कैकई का हृदय पिघल जाए। वो कहते कि राम तो तुम्हारी सेवा करता है, गुरु की सेवा करता है, धर्म का पालन करता है, कभी मैंने उसके विरुद्ध एक भी बात नहीं सुनी, तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी है? और फिर तुम राम से दुश्मनी कर रही हो। जानती हो राम ने बहुत से बड़े बड़े कार्य किए हैं, उसने इन सारे लोगों को जीत लिया अपनी अच्छाई से, उसने ब्राह्मणों को जीत लिया दान देकर, उसने शत्रुओं को जीत लिया अपने धनुष बाण से, और उसने गुरु को जीत लिया सेवा से। दशरथ महाराज यहां हमें सिखला रहे हैं कि अगर इस जगत में हमें किसी को जीतना है तो किससे जीतना चाहिए। हम तो ये लोगों को जीतने का प्रयास नहीं करेंगे, शत्रुओं को जीतने का प्रयास नहीं करेंगे, ब्राह्मणों को भी जीतने का प्रयास नहीं करेंगे। गुरु को जीतना है तो सेवा से जीतना चाहिए। यहां वो कहते हैं कि रामचंद्र ने गुरु को सेवा से जीत लिया, अर्थात हमें ऐसी सेवा करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि गुरु आकर देखें, गुरु आकर पीठ थपथपाए, वही सेवा है। हम सेवा से गुरु को जीत सकते हैं, क्योंकि गुरु हमारी सेवा, वो जहां भी हैं वो हमारी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। इसीलिए गुरु को सेवा से जीतना चाहिए। हम जहां हो, जिस स्थिति में हो, दुनिया के किसी कोने में हो, ऐसी सेवा करें जिससे हमारे गुरु का नाम बहुत बढ़ जाए, लोग पूछने लगे कौन है ये, किसका शिष्य है ये, और तब कोई अच्छा ये उनका शिष्य है, ओ ये प्रभुपाद जी का अनुयायी है, तभी इतना अच्छा है। लेकिन इसमें एक खतरा भी है, अगर आप गलत काम करते हैं तो भी लोग यही प्रश्न करते हैं कौन है ये, किसका शिष्य है ये, ओ प्रभुपाद जी का अनुयायी है, इस कौन वाला है, अच्छा। तो इसीलिए हमें ऐसी सेवा करनी चाहिए, ऐसी सेवा, इतनी अच्छी सेवा कि लोग पूछने लगे कौन है ये लोग, किस संस्था से हैं, किसके अनुयायी हैं, तब हम लोग गर्व से कह सके हम लोग श्रील प्रभुपाद के अनुयायी हैं। लेकिन उससे पहले ऐसी सेवा कीजिए जिससे वो भाव आ सके, हम लोग सर उठाकर कह सके कि हम श्रील प्रभुपाद के अनुयायी हैं। हमने अभी तक समझा नहीं है कि श्रील प्रभुपाद के अनुयायी होने का क्या अर्थ है, हम जानते नहीं है, क्योंकि हमें ये चीज बड़ी सरलता से मिल गई है, इसलिए हम भूल चुके हैं कि प्रभुपाद के अनुयायी होने का अर्थ क्या है। प्रभुपाद के अनुयायी होने का अर्थ है प्रथम श्रेणी के कृष्ण भक्त, ये प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं। और हमने अभी तक वो सीखा नहीं है कि क्या अर्थ होता है प्रभुपाद के अनुयायी कहलाने का या बनने का। केवल संस्था से जुड़ जाना प्रभुपाद के अनुयायी होना नहीं है, केवल संस्था में आकर कुछ थोड़ा बहुत बने रहना ये प्रभुपाद के अनुयायी बनना नहीं है। प्रभुपाद के अनुयायी बनना है तो हमें प्रभुपाद की तरफ प्रचार करना चाहिए, सही दृष्टि में प्रभुपाद के अनुयायी, जैसा प्रभुपाद ने किया, ऐसे ऐसे स्थान में जाकर प्रचार किया जहां खतरा था। प्रभुपाद गए, रशिया में खतरा था, उनको अरेस्ट कर सकते थे, प्रभुपाद गए रशिया। दुनिया के हर कोने में वृद्धावस्था में गए हैं प्रभुपाद, अफ्रीका गए प्रभुपाद, जर्मनी गए, लंदन गए, अमेरिका गए, यूरोप के कई शहरों में गए, भारत में कई स्थानों पर गए, वृद्धावस्था की चिंता नहीं की उन्होंने। और किन लोगों को प्रचार किया, मंदिर में बैठकर भारतीय समुदाय को प्रचार नहीं किया प्रभुपाद ने कि हाँ जो सब सत्संगी आकर बैठे हैं, प्रभुपाद ने गाया, सबने कहा बहुत अच्छा स्वामी जी, ये लीजिए डोनेशन। प्रभुपाद ने उन लोगों को प्रचार किया जिनको पता भी नहीं था कि सत्संग में बैठना कैसे है। प्रभुपाद ने उन लोगों को प्रचार करके भक्त बनाया। बनिए प्रभुपाद के अनुयायी और प्रचार कीजिए ऐसा। तो इसीलिए गुरु को हम सेवा से जीत सकते हैं, ऐसी सेवा हमारी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि राम ने तो ये कार्य किया है, और फिर देखो अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, दशरथ महाराज कहते मैं तो बस मरने वाला हूं थोड़े समय में, इतना भी कह दिया। देखिए एक जो प्रेम करती थी अगर कहकर, ये सुनकर ही चुप हो जाना चाहिए था कि दशरथ महाराज कह रहे मैं मरने वाला हूं और अब तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कम से कम अब इस बात को मत, इस समय मेरे जीवन के अंतिम समय में ये चीज मत करो, मैंने बहुत अच्छा जीवन जिया है, अब जीवन के अंत में कलंक मत लगाओ मेरे ऊपर। कहकर नहीं मानी, देखिए कितना प्रयास वो कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, कह कही कहने लगी आप ये ऐसी बातें कर रहे हैं, अगर ये हो भी गया, आप अपने धर्म का कैसे पालन करेंगे अगर आपने दो वचन नहीं दिए? क्या मुंह दिखाएंगे आप ऋषि मुनियों को? कौन कह रही है? कैकई ये भूल गई कि इतिहास तुमसे पूछने वाला है, तुम कैसे मुंह दिखाओगी वो पता नहीं है उसको अभी। और दशरथ महाराज से पूछ रही है कैसे आप ऋषि मुनियों को मुंह दिखाएंगे झूठ बोलने के बाद, अपना वचन पूरा नहीं करने के बाद। और फिर वो कहने लगी कि ये आपके द्वारा आपके कुल पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगेगा। तो कैकई जानती थी कि जो उस समय के राजा होते थे उनको अपने मान सम्मान और कुल की मर्यादा का बहुत महत्व रहता था। रामचंद्र जी ने भी जब सीता को बचाया और जब सीता आई युद्ध के बाद, तो रामचंद्र जी ने भी सीता से यही बात की, मैंने तुम्हारे लिए युद्ध नहीं किया, मैंने युद्ध अपनी कुल की मर्यादा को बचाने के लिए किया कि कल को यही नहीं, कोई नहीं कहे कि रघुकुल की बहू को कोई ले गया उठाकर और कुछ किया नहीं रघुकुल वालों ने, इसलिए मैंने अपनी कुल की मर्यादा को बचाने के लिए किया, तुम्हारे लिए युद्ध नहीं किया मैंने, तुम्हें जहां जाना चली जाओ, भगवान कहते हैं ऐसा। तो ये देखिए, तो ये कैकई जानती थी, इसलिए अब दशरथ महाराज को ये बातें कह रही है, क्या मुंह दिखाओगे ऋषि मुनियों को, कुल पर धब्बा लग जाएगा, धर्म कहां जाएगा तुम्हारा, और तुम सोचते हो कि तुम्हें अपने ये राम को देना एक शरीर का हिस्सा देने की तरह है, तो याद करो शिबी का बलिदान, शिबी ने अपने मांस को काट काट कर दे दिया था धर्म की रक्षा के लिए, और तुम अपने पुत्र को नहीं दे सकते। कैकई कितनी बुरी तरह से उनको कह रही है। तो ये सुनकर अब दशरथ महाराज को और क्रोध आ गया, उसने कहा कि कौन है जो तुम्हें ये सब सिखा रहा है, क्योंकि वो जानते थे कैकई ऐसी है नहीं, अभी तक किया नहीं था, तो कौन है जो तुम्हें सिखा रहा है, क्या कोई भूत लग गया है तुम्हें? हो सकता है कभी कभी ऐसा हो जाता है भूत चढ़ जाता है फिर थोड़े समय बाद उतर जाता है, तो दशरथ महाराज सोचे ऐसा कुछ है तो दो दिन रुक जाता हूं, उतर जाएगा उसके बाद फिर करेंगे, तो क्या भूत चढ़ गया है? और फिर क्या तुम ये सोचती हो कि भरत ये राज्य स्वीकार कर लेगा? जिस तरह से कैकई बड़ी चालाकी से चतुराई से ये बता रही थी कि आप धर्म का पालन नहीं कर रहे, कुल पर धब्बा लगा रहे हैं, अब दशरथ महाराज भी कह रहे तुम जिसके लिए कर रही हो, भरत क्या तुम्हारा ये स्वीकार करेगा राज्य? तुम्हें लगता है कि वो स्वीकार करेगा? और अगर उसने कर भी लिया, मैंने किया, तो मैं दूसरों को जवाब क्या दूंगा? जब अयोध्या का हर वासी मुझसे प्रश्न करेगा कि आपने कैसे कर दिया, मैं क्या जवाब दूंगा हर एक को? क्योंकि कैकई कह रही थी कि क्या मुंह दिखाएंगे, तो कह रहे थे मैं क्या जवाब दूंगा, और ये जान लो तुम सबकी मृत्यु का कारण बनोगी। और अगर आगे चलकर ऐसा हुआ भी कि अगर भरत ने स्वीकार कर लिया इस राज्य को, तो मैं ये घोषणा करता हूं कि वो मेरा अंतिम संस्कार नहीं करेगा, मैं उसको आज ही इस अधिकार से अलग करता हूं अगर भरत ने इसको स्वीकार कर लिया तो। तो उस समय कैकई बड़ी दुखी, कैकई कहने लगी कि मैं अपने पिता के घर चली जाऊंगी, मैं जहर ले लूंगी। ना स्त्रियां पहले से धमकियां देती हैं, करती नहीं है कुछ, लेकिन तो कैकई ने भी धमकी दे दी। तो उस समय इतना क्रोध था दशरथ महाराज को, उन्होंने कहा तुम जहर ले लो, अग्नि में प्रवेश कर लो, धरती में चली जाओ, लेकिन मैं ये वचन नहीं दूंगा। बहुत दुखी थे दशरथ महाराज। तो ऐसे जब उन्होंने कहा, तो कैकई ने अंतिम बार कहा, तुम्हारे सत्य का क्या, तुम्हारे तो कुल की रीत है, बार बार उस कुल की बात कर रही, तुम्हारे कुल की रीत है, उस सत्य का क्या होगा? तो दशरथ महाराज तब तक बड़े हताश हो चुके थे, समझा चुके थे, नहीं मान रही थी, वो गिर गए, कुछ नहीं बोले। और उस समय कैकई ने सुमंत्र को बुलाया, सुमंत्र आए, सुमंत्र न केवल मंत्री हैं दशरथ महाराज के, मगर मित्र भी हैं। उन्होंने दशरथ महाराज की अवस्था देखी, कैकई की अवस्था देखी, वो समझ गए कि कोई बहुत बड़ी विपदा आ गई है, तो वो चुपचाप खड़े हुए आदेश सुनने के लिए कि महाराज क्या कह रहे हैं, राजा क्या कह रहे हैं। तो उनको राजा ने नहीं, कैकई ने आदेश दिया, जाओ राम को बुलाकर लाओ, दशरथ महाराज मिलना चाहते हैं। सुमंत्र गए नहीं, क्योंकि सुमंत्र मंत्री राजा के हैं, कैकई के नहीं है, उनसे आदेश लेने की जरूरत नहीं है। और ऐसी स्थिति में, खास करके जब राजा बड़े प्रायः मूर्छित पड़े हुए हैं उन, और ये मंत्री हैं, तो इसलिए मंत्री बड़े बुद्धिमान हुआ करते थे, वो तुरंत भाग गए कि कोई बहुत बड़ी विपदा, उनको पता नहीं था क्या हुआ, लेकिन कुछ तो हुआ है, इसलिए वो गए नहीं। दूसरी बार कैकई ने कहा जाइए बुलाकर लाइए, तो वो गए नहीं, क्योंकि वो महाराज से आदेश सुनना चाहते थे। उस समय दशरथ प्रायः सब कुछ छोड़ चुके थे, मान चुके थे कि मानेंगे नहीं, तो उन्होंने सुमंत्र की ओर देखकर बोला जाओ आदेश का पालन करो, क्यों नहीं हो रहा आदेश का पालन। तो फिर सुमंत्र गए कि अब तो राम को बुलाकर लाना होगा। तो सुमंत्र गए, उन्होंने रामचंद्र जी को संदेश दिया कि दशरथ महाराज ने अभी आपको बुलाया है। तो उन्होंने सोचा सबने कि ठीक है, अब बुलाया है, कोई राज्याभिषेक की सेरेमनी होगी। तो रामचंद्र जी आए और रथ पर सवार हुए, क्योंकि अब जब घोषणा हो चुकी है कि वो राजा बनेंगे, तो फिर अब जब उनको चलना है तो वो रथ पर जाएंगे। तो दशरथ महाराज के राज महल की ओर जाते हुए अब वो रथ पर चले, और उनके रथ पर एक सफेद रंग का छत्र था, मतलब राजा का जो होता, क्योंकि अब घोषणा हो चुकी है राजा होंगे, और सबको पता था कि राजा कौन विरोध करने वाला है, तो इसीलिए पहले से ही हो गया कि अब निकले हैं, तो सब रामचंद्र जी ने भी स्वीकार कर लिया। देखिए सब पता था क्या होने वाला है, वहां जाके क्या होना है पता था रामचंद्र जी को, लेकिन ठीक है छत्र दे रहे हो दे दो, रथ दे रहे हो दे दो। तो रथ पर चढ़े और सारे जो नागरिक थे बड़े प्रसन्न हो गए, उनको लगा कि अब रामचंद्र जी जा रहे हैं, कुछ राजा कहेंगे, फिर राज्याभिषेक शुरू हो जाएगा। तो ऐसे रामचंद्र जी अब दशरथ महाराज के सामने पहुंचते हैं, और जैसे ही वो पहुंचते हैं, रामचंद्र जी लाया जाता है उनको, तो दशरथ महाराज कुछ बोले, वो तो बोलने की स्थिति में ही नहीं थे, पड़े हुए थे। तो रामचंद्र जी ने देखा ये क्या हो गया, मेरे पिता ऐसे, और उन्होंने कैकई की ओर देखा, तो कैकई ने कहा कि राम तुम्हें यहां बड़े विशेष कार्य के लिए बुलाया गया है। क्या विशेष कार्य है बताइए। उन्होंने कहा पहले वचन दो कि जो तुमसे कहा जाएगा वो तुम पूरा करोगे। पहली बार ऐसा हुआ कि राम से ऐसा कहा जा रहा है कि राम पर विश्वास नहीं है। तो रामचंद्र जी ने कहा कि आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, आप अगर कहें तो मैं जहर पी सकता हूं आपके लिए, अगर आप मुझे जहर दे देंगी तो मैं जहर भी पी लूंगा, और अगर आप कहेंगे कि अग्नि में प्रवेश कर जाओ मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, आप कहें समुद्र में कूद जाओ मैं समुद्र में कूद जाऊंगा, इससे ज्यादा और क्या आप कहने वाली। मतलब राम उनको कह रहे थे कि आप तो मुझे बहुत छोटी सी बात कहने वाली हैं, 14 वर्ष का वनवास, मैं तो उससे बहुत ज्यादा कर सकता हूं आपके लिए, बताइए क्या बात है। तो उस समय कैकई ने कहा राम से कि पूर्व काल में महाराज ने मुझे 2 वचन दिए थे, आज मैंने उन 2 वचनों को मांगा है और महाराज ने मुझे वो 2 वचन दिए हैं। तो वो 2 वचन हैं कि ये जो अयोध्या का राज्य है वो भरत को मिलेगा, और तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। जैसे ही श्री राम ने ये सुना, कैकई के मुख से बात खत्म हुई, रामचंद्र जी ने कहा बस इतना कहना था आपको, कोई शिकन नहीं उनके माथे पर। आप सोचिए राज्य आ रहा था, अयोध्या का राज्य, और जो उस समय अयोध्या पर राज्य करता था वो पूरी पृथ्वी पर राज्य करता था, ये भारत की परंपरा थी। सतयुग में जो उज्जैन पर राज्य करता था वो सारी दुनिया पर राज्य करता था, त्रेता में जो अयोध्या में करता था, द्वापर में जो हस्तिनापुर में, और कलयुग में अब होने वाला है कि जो दिल्ली में राज्य करेगा वो पूरी दुनिया में राज्य करेगा। तो ये था। तो सोचिए रामचंद्र जी क्या छोड़ रहे थे, कोई छोटा सा राज्य नहीं, पूरी दुनिया का राज्य रामचंद्र जी के माथे पर, एक शिकन नहीं। कि आते आते आप सोचिए हम लोगों के साथ ऐसा हो, कल हमें प्रधानमंत्री बनना है देश का, और आप रात को सोने गए हैं बड़े आराम से आंख बंद करके, कल सुबह मैं पद की प्रतिज्ञा लूंगा, राष्ट्रपति मुझे पद की प्रतिज्ञा दिलाएंगे कि मैं भारत के संविधान को फला 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 रखते हुए ये कहता हूं, और रात्रि के समय कोई आते हैं आपको आइए जरा बुलाया है आपको, और आपको ले जाते बोले कल आप मंत्री नहीं बनने वाले हैं, आपको जेल भेजा जा रहा है। किस लिए? ऐसे ही बस इच्छा है। कोई आपका दंड नहीं, कोई कार्य नहीं, कोई गलती नहीं है। राम की क्या गलती थी? तो बस भेजा जा रहा है। क्यों? वो पहले के जो प्रधानमंत्री थे उसने कुछ गड़बड़ की थी, इसके लिए आपको भेजा जा रहा है। आप सोचो आप क्या करोगे? आप विरोध करो, विद्रोह कर दोगे? आप बोलोगे देखता हूं कैसे होता है, 300 एमपी है मेरे पास, मजाक है क्या? सारी सरकार हिला दूंगा। रामचंद्र जी ने बिल्कुल नहीं कहा कि सारी अयोध्या मेरे साथ है, बता बना के तो दिखाओ, देखता हूं कैसे राज्य करता है भरत। एक शिकन नहीं माथे पर, तुरंत कह दिया बस ये लीजिए अभी कर देता हूं इसको, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि महाराज ने मुझे ये क्यों नहीं कहा, क्या उनको विश्वास नहीं है मुझ पर? ये जरा सी इतनी सी बात कहनी थी, मुझे लगा कोई बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए कि क्या क्या भाव है रामचंद्र जी का, क्या क्या उनकी चेतना है, कोई आसक्ति नहीं एक पल की भी। तो ऐसे रामचंद्र जी ने राज्य को त्याग दिया, और फिर उन्होंने तुरंत उसी समय, ऐसा नहीं कि बोला कि अच्छा ठीक है काम करते हैं कि थोड़ा मुझे प्लानिंग करने का समय चाहिए, तो एक 2 महीने की एक्सटेंशन लेते हैं, फिर 2 महीने के बाद जाएंगे, तब तक थोड़ा व्यवस्था कर लूँ, रूट फाइनल कर लूँ, प्लेन के टिकट विकेट बना लूँ, कुछ नहीं, रामचंद्र जी का अभी जाऊंगा, तुरंत जाऊंगा, बस मैं अपनी माता से अनुमति लेकर आता हूं। और रामचंद्र जी निकले दशरथ के महल से बाहर, तो सैनिक खड़े थे, तुरंत उन्होंने तुरंत छत्र लगाया उनके ऊपर। रामचंद्र जी ने कहा बिल्कुल नहीं, हटाओ इसको। तो सैनिक घबरा गए, क्या हुआ? तो छत्र हटा दिया गया, रामचंद्र जी चले बाहर आए, रथ तैयार हुआ, रामचंद्र जी ने कहा हटाओ रथ, पैदल जाएंगे। सब हैरान हो गए, हुआ क्या? किसी को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सब तो ये सोच रहे थे कि राजे अभिषेक होने, राजा बनने, और रामचंद्र जी उस समय पैदल गए। तो उसी क्षण से उन्होंने सारे राज्य का भोग त्याग दिया, और फिर गए कौशल्या के पास सबसे पहले ये सूचना देने के लिए। और आप सोचिए कौशल्या की क्या स्थिति होगी। उन्होंने सूचना दी कौशल्या को, सीता को, लक्ष्मण को, लक्ष्मण का तो कहना ही क्या, इतने गुस्से में थे लक्ष्मण, उन्होंने कहा कोई कहीं नहीं जाएगा, रामचंद्र जी वनवास नहीं जाएंगे, ये स्त्री से आसक्त पुरुष अपने पिता के लिए कह रहे थे, ये स्त्री से आसक्त पुरुष, कामी पुरुष, इसको मैं बंदी बना लूंगा, और अगर अयोध्या वालों ने किसी ने भी विरोध किया तो मैं सारी अयोध्या को जलाकर खाक कर दूंगा। रामचंद्र जी सोच रहे थे अयोध्या को जला दोगे तो राज्य कहां पर करूंगा, सारी अयोध्या जला दूंगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हुई। ये भगवान राम की सबसे महत्वपूर्ण लीला है। भगवान जब आते हैं तो उनमें कुछ लीलाएं सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। एकाद लीला, रामचंद्र जी की लीला में वनगमन लीला सबसे महत्वपूर्ण लीला है, कहना चाहिए कि रामायण का सार है। और विशेषतः वो प्रसंग जब रामचंद्र जी जा रहे हैं, क्या क्या संवाद हुए, सुमंत्र ने कैकई का इतिहास बताया, कैकई की माता का इतिहास बताया कि ये जो तुम कर रही हो तुम्हारी माता ने भी ऐसा ही किया था, तुम्हारी माता तुम्हारी पिता की मृत्यु का कारण बनने वाली थी। और उस समय बड़ा सुंदर वर्णन है जब वलकल वस्त्र लाए गए, पहनना नहीं आता था, ऐसे बहुत विस्तार से वर्णन किया गया वाल्मीकि रामायण में। तो ये सारे वर्णन हम लोग अगली बार जब राम कथा होगी तो उसमें इसको सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल सुबह 7:30 बजे हम लोग भागवतम के 10वें स्कंद पर जो चर्चा कर रहे हैं उसको चालू रखेंगे। ये शाम की जो कक्षाएं हैं कल से नहीं होंगी, 2-3 दिन के लिए, और उसके बाद अगर हो सका तो किसी और विषय पर एक 7 दिन का और सेमिनार करेंगे या 7 दिन की कथा कोई होगी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको सूचना दे दी जाएगी। रविवार या सोमवार से इसको प्रारंभ करेंगे। तब तक सुबह की क्लास चलती रहेगी, सुबह 7:30 से 8:30 भागवतम का 10वां स्कंद। तो कल उसमें दामोदर लीला के 2 अध्यायों की चर्चा कल और परसों होगी और फिर आगे की भगवान की लीलाओं का वर्णन करेंगे। जब तक ये लॉकडाउन है देखते हैं कितने अध्याय पूरे हो जाते हैं। और साथ ही साथ हम आप सबका धन्यवाद भी देना चाहते हैं। कई भक्तों ने हम लोगों को जो हम ये इस समय में जो बाहर स्थिति खराब है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भोजन मिल नहीं रहा है क्योंकि वो लोग कुछ कमा नहीं पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं। और हमारी संस्था यहाँ इस्कॉन ग्रेटर नोएडा, हालांकि हम लोग बहुत छोटे से हैं, आज हमने सुना कि भारत में टोटल इस्कॉन ने कोरोना अफेक्टेड लोगों को भारतीय स्थान में 2,65,000 से ज़्यादा लोगों को वो खिला रहे हैं, या और भी ज़्यादा होंगे हमें नहीं पता। हम लोग तो बहुत छोटे से हैं, 1,000-1,500 लोगों को खिला रहे हैं लेकिन वो भी हमारी क्षमता के परे है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कुक्स नहीं है, फिर भी हम लोग कर रहे हैं और आप लोग सहयोग कर रहे हैं। कुछ भक्तों ने आज चावल ला कर दिए, किसी ने हमारे अकाउंट में भी कुछ, इस्कॉन के अकाउंट में कुछ राशि भी डाली है। तो उन सभी भक्तों का हम धन्यवाद देते हैं जो हमें सहयोग कर रहे हैं। ये 1 महीने तक हमें रोज देना है, अभी आगे की स्थिति का पता नहीं। तो हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, आप लोग सहयोग कीजिए तो बहुत अच्छा होगा। कोई प्रश्न है? हाँ जी। ओ यस, बहुत अच्छा। हम ये कह ही नहीं जा रहे थे कि आप लोग जो घर में हैं, कितने लोगों ने भोग बनाया आज भगवान के लिए, राजभोग, तो उनकी कितने लोगों का आया है? लव सबका पढ़ना चाहिए। अच्छा है।
ऊपर नाम लिखा है, उसके बाद नीचे वो।
अच्छा, ऊपर से कि लास्ट? अच्छा, यहाँ से। ओके, बहुत सारे आए हैं, सबका पढ़ना तो नहीं होगा लेकिन थोड़े बहुत पढ़ देते हैं। ये हैं बादरायन प्रभु का, 40 भोग बनाए उन्होंने। जय हरि बोल। यहाँ ब्रह्मचारी बहुत प्रसन्न हो गए बादरायन प्रभु। अगर ये कोरोना का नहीं होता तो सब आपके घर पर दिखाई देते। और ये कौन है? हरि कथा प्रेमी माता जी, इन्होंने लिखा है कि इन्होंने जप किया है, बहुत अच्छा। शांतिपुर प्रभु ने 64 माला जप किया आज, और माता जी ने भी 64 माला, और अनमोल ने 34 माला किया है। बहुत अच्छा। बादरायन प्रभु के माला पढ़ना भूल गए। बादरायन प्रभु ने 32 माला, माता जी ने 48 माला, और उनके छोटे से बच्चे गोविंद और श्रुति ने 8 माला किए हैं। जय हो। बहुत अच्छा। और अरविंद प्रभु के घर से उन्होंने आज भगवान की प्रसन्नता के लिए 56 भोग बनाए हैं। और ये जयती राधा माता जी के पास वहां से है, उन्होंने 42 राउंड किए हैं हमारा महामंत्र के और 14 भोग बनाए हैं। और सीकर से हैं, सीकर में इन्होंने 20 भोग बनाए हैं, 45 मिनट तक कीर्तन किया है और 16 माला जप किया है। ओके, और ये किनका है? दिव्य प्रेम प्रभु, इन्होंने 19 भोग बनाए हैं, 32 माला जप किया, माता जी ने भी 32 माला और प्रणव ने भी 2 माला जप किया है। इनके लिए तो इन सब के लिए जोर से 3 बार हरि बोल कहेंगे। बहुत अच्छा। एक प्रश्न आया है, आपने कहा था कि मंथरा की पास्ट की स्टोरी आप कहेंगे, मंथरा का टॉपिक आएगा तब चर्चा करेंगे, लेकिन आपने आज नहीं कहा तो थोड़ा, हमने आज दोपहर को कही थी मंथरा की कथा ना, ठीक है, ये लोग सब नहीं थे शायद। ओके, थोड़े से और। अच्छा, हमने नीचे तो देखा नहीं, बहुत सारे भोग का। ओ सॉरी सॉरी, प्रश्न बाद में लेते हैं, पहले भोग का पढ़ दें, हमने सोचा हो गया सब। ओके, तो ये है निकुंज राधा माता जी, 11 भोग बनाए हैं, 40 मिनट तक पढ़ाई की है और 18 माला जप किया, 40 मिनट कीर्तन। महादेव प्रभु 25 भोग बनाए हैं इन्होंने। और कहाँ है, थोड़े प्रश्न है उनको बाद में लेंगे। हरिस्मरण प्रभु हमारे भोग बनाने में क्या बोलते एक्सपर्ट, उन्होंने 61 भोग बनाया है, 25 माला जप किया है। जय हो, दोनों ने, माता जी ने भी और प्रभु जी ने भी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, श्याम मनमाली प्रभु 32 माला जप किया है, माता जी ने 16 माला और 7 भोग बनाए हैं। अब लोग हरि बोल नहीं कह रहे हो, इतना जोर से बोलो। ओके, संध्या यादव माता जी तो 20-20 भोग बना, 20 माला किया है और 16 भोग बनाया है। ओके, उल्टा हो गया, 20 माला और 16 भोग। अच्छा, और अर्चना माता जी इन्होंने 14 भोग बनाए हैं और 32 माला जप किया है। भक्ति विहारिणी माता जी 64 माला जप किया है और हरि नामामृत माता जी ने भी 64 माला जप किया है और कुल मिला के 25 भोग बनाए हैं। अद्वैताचार्य प्रभु 10 भोग बनाए हैं, 2 बार लिखा है, तो हो सकता है कि एक बार 10 माता जी ने बनाए, 10 प्रभु जी ने बनाए हैं, ऐसा कुछ है या पता नहीं। तो और 32 माला जप किया है। ओके, माधवकांत माता जी ने 11 भोग बनाए हैं। हरिस्मरण प्रभु का हो गया, और कौन है, पांचाली सखी माता जी इन्होंने 7 भोग बनाए, 26 माला जप किया है। जाए, और किसका है, बस इतना ही है। हाँ, एक और है, राधिका प्राण प्रभु, इन्होंने कीर्तन भी किया, अभिषेक भी किया, 12 भोग बनाए, 25 माला जप किया है, माता जी ने 16 माला, दामोदर ने 6 और विशाखा ने 4। जय हो। ठीक है, तो ये आगे तो किसी के नहीं है। अच्छा, अब आ रहे हैं धीरे धीरे। एक किसी के आए हैं 12 भोग और 16 माला जप, गौरांगी ने 1, दया 6। ओके, यहाँ पर कई लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि कैसे लक्ष्मी सेवा देनी है। आप अगर ऊपर देखेंगे तो पहला जो मैसेज है उसमें अकाउंट नंबर दिया गया है, यहाँ पर अरविंद प्रभु के द्वारा पहला ही जो पहला दूसरा मैसेज है। हाँ, फिर से भेजा। ओके, तो उन्होंने भेजा है, इस कौन का अकाउंट नंबर है, आंध्रा बैंक का अकाउंट है ये, तो आप इस अकाउंट नंबर में आप धन दे सकते हैं। अगर आप आसपास रहते हैं और आपको पुलिस वाले डंडा नहीं मारते हैं तो आप आकर राइस भी दे सकते हैं, सब्जी दे सकते हैं, जो चाहे दे सकते हैं, तो ये सुविधा आपके लिए है। और एक बार उन्होंने अकाउंट नंबर भेज दिया। ओके, अभी कुछ प्रश्न हैं इनमें से। समय क्या हुआ, ओके, आप लोग ये कर सकते हैं कि आपके सारे प्रश्न कल पूछ सकते हैं, अभी ये भोग उसमें प्रश्न सारे मिक्स हो गए हैं, फिर भी एक दो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। ओके, आप लोग कल ये प्रश्न पूछ लीजिएगा, 4-5 प्रश्न हैं, इनका कल सुबह उत्तर दे देंगे। अभी थोड़े कंफ्यूजन हो रहा है कौन सा प्रश्न है और कौन सा भोग के विषय में कहा। तो हम आप सबके बहुत आभारी हैं, बहुत अच्छा लगा कि आप सब ने इतने सारे भोग बनाए हैं आज भगवान राम की प्रसन्नता के लिए और इतने माला जप किया, कीर्तन किया, तो प्रार्थना करते भगवान राम से कि आपके हृदय में भक्ति को वो स्थापित करें। और इतने दिनों तक रामायण की कथा भी आपने सुनी, और आशा करते हैं कि आगे भी जो कथा भी 2-3 दिन बाद शाम के समय प्रारंभ होगी उसमें भी आप सब भाग लेंगे, आपको सूचना दे दी जाएगी, संदेश आ जाएगा, तो जो भी प्रारंभ होगा। यस, यू वांट टू से समथिंग क्वेश्चन? हाँ बोलिए। भगवान जब आते हैं वो सबसे ऊंचे आदर्श को स्थापित करते हैं जिससे हम उस स्तर तक पहुंचने का अभ्यास करें, क्योंकि अगर भगवान सबसे ऊंचे स्तर को स्थापित नहीं करेंगे तो फिर जैसे कहा जाता है ना कि हमें ये नहीं डरना चाहिए कि हमारा उद्देश्य बहुत ऊंचा है और हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, हमें ये डरना चाहिए कि हमारा उद्देश्य बहुत नीचा है और हमने उसको प्राप्त कर लिया। तो इसलिए भगवान एक ऊंचे उद्देश्य को रखते हैं। तो हमें भगवान से क्या सीखना है? तुलना तो नहीं कर सकते जो भगवान करते हैं, हम उनसे सीखते हैं कि हमें भी उस स्तर तक पहुंचना है। भगवान का जो प्लान है उसी प्लान के अकॉर्डिंग हमें काम करना सीखना है, ये हमें सीखना है। तो भगवान का निश्चित प्लान है और भगवान को पता है, भगवान का जो प्लान है हमें नहीं पता है, मगर भगवान आकर इन लीलाओं के द्वारा उसको दर्शाते हैं, तो हमें भी उनके पदचिन्हों पर चलने का कड़ाई से पालन करना है। तो जब हमने ये बात कही कि रामचंद्र जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उनका ईगो हर्ट नहीं हुआ, तो हमें भी सोचना है कि क्यों नहीं हम भी उनकी ही योजना के अनुसार उनके ही पदचिन्हों पर चलें। वो इसलिए लीला नहीं करते कि केवल उनको आनंद लेना है, वो लीला इसलिए भी करते हैं कि हमें शिक्षाएं देना चाहते हैं कि आपको ऐसा बनना है तब आप मेरी लीला में प्रवेश कर सकते हो, तो इसलिए हमें उसको प्रयास करना चाहिए। ठीक है? यस। निश्चित निश्चित है, और ये भी हमें देखना चाहिए, इसको देखने का एक है कि जब किसी भी भगवान की लीला में किसी भक्त के साथ ऐसी चीज होती है उससे उन भक्त का कभी भी स्तर नीचे नहीं आता। जैसे भगवान को अच्युत कहा जाता है कि वो चाहे अर्जुन के सारथी बने, मत्स्य अवतार में आए, कूर्म अवतार में आए, उनकी स्थिति दिव्य है, ऐसे ही भगवान के नित्य संगियों की स्थिति भी दिव्य है। तो भले कैकई ने ऐसे कार्य किए, अफकोर्स ये थोड़े समय के लिए था, फिर उसे पश्चाताप भी हुआ और इत्यादि, तो भले किया है, तो हमें कैसे देखना चाहिए कि वो भगवान की नित्य लीला में भाग लेने वाली उनकी शुद्ध भक्त हैं। तो उन्होंने जो किया वो केवल हमें एक संदेश देने के लिए किया, भगवान अपने शुद्ध भक्तों को हम जैसे लोगों को संदेश देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, गलत काम करवाते हैं उनसे, जैसे परीक्षित महाराज ने गलत कर दिया, चित्रकेतु महाराज ने गलत कर दिया, या जो भी है, तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों का इस्तेमाल करते हैं हमें संदेश देने के लिए। तो इसलिए हम उनके लीलाओं से शिक्षा लेते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि उनका स्तर हमेशा ऊंचा है, वे भी भगवान की तरह ही दिव्य स्तर पर है, उनका स्तर नीचे नहीं आ जाता इन छोटी मोटी चीज़ों से। जैसे परीक्षित महाराज का स्तर नीचे नहीं आ गया कि उन्होंने, हम कभी उनकी निंदा नहीं करते कि साधु के गले में झाड़ दी कैसे परीक्षित महाराज हैं, नहीं, क्योंकि वो उनकी स्थिति बनी रहेगी, वो दिव्य स्तर पर ही है। तो हमें भी यही लेना चाहिए कि हाँ, अगर हमको भी अवसर मिले कभी कैकई बनने का तो क्यों नहीं, कैकई बनना तो क्या, आप मंथरा भी बन जाए तो भी बहुत अच्छा है भगवान की लीला में, लेकिन उसके लिए भी हमें शुद्ध होना जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कल सुबह 7:30 बजे आप सबसे भेंट होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।